From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City में Temple Square सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 143वां अर्धवार्षिक समास सम्मेलन है। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पद अधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडल गायक मंडली द्वारा होगा। इसका प्रसारण बोनविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्य की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष हेनरी बी आयरन गिरजे की प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. We extend our greetings and warm regards to members of the church and friends everywhere who are participating in these proceedings by radio, television, the internet, or satellite transmission. The music for this session will be by the Tabernacle Choir, under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy, with Bonnie Goodliff at the organ. The choir will open this session by singing, "They, the Builders of the Nation." The invocation will then be offered by Brother David L. Beck, Young Men General President, after which the choir will sing, "When He Comes Again."
Trails on. Our Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता, हमारी आत्मा के ऊपर बहुत सारी आशीष दी गई है. हम इन सब के लिए धन्यवाद देते हैं. आपके हाथ का स्वीकार करते हैं. सब कामों में हम आपके परमेश्वर पर आप प्रेम करते हैं और आपके पुत्र यीशु मसीह को हम अपने मार्गदर्शकों को सस्टेन करते हैं. हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इन्होंने हमें संदेश दिया है और संगीत दिया है, ताकि आपके हाथों में एक प्रभाव बन सकें. हम अपने इच्छाओं के द्वारा, अपने मनों के द्वारा इन बातों को सुन सकें और इस निश्चय के साथ जो कुछ भी हमसे कहा जाता है हम उसे पूरा करेंगे. हम इस सबको विनम्रता से नाम से और यीशु मसीह के नाम में आमीन.
We will now be pleased to hear from elders Quintel
और अब 12 प्रेरितों की परिषद के एल्डर क्विंटल एल कुक और एल्डर नील एल एंडरसन को सुनने का हमारा सौभाग्य होगा। उनकी टिप्पणी के बाद भाई डेविड एम मैकॉन्की संडे स्कूल की महाअध्यक्षता में प्रथम सलाहकार हमसे वार्ता करेंगे।
Early in our marriage, my wife Mary.
हमारे विवाह के आरंभ में मेरी पत्नी मेरी और मैंने निश्चय लिया था कि हम जहाँ तक संभव होगा हम उन गतिविधियों में शामिल होंगे जिसमें हम दोनों मिलकर जा सकें। हम अपने बजट के प्रति अधिक सतर्क करना चाहते थे। मेरी को संगीत पसंद है और उसे चिंता थी कि शायद मैं खेल के समारोह में अधिक ध्यान दूंगा, इसलिए उसने समझौता किया कि सभी खर्च के करके देखे जाने वाले समारोह में दो संगीत कार्यक्रम ओपरा या संस्कृत आतियों में केवल एक गोल गेम होगा। शुरुआत में मैं इस ओपरा वाली बात के विरोध में था, लेकिन समय के बीतने के साथ मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया था और मैं जस्टिसी वर्डी के समारोह में मुझे आनंद लगा था। इस समय उनकी 2वीं वर्षगांठ होगी। अपनी युवा में वर्डी का यमरा में यरमहा में लगाव था। 1842-28 की आयु में वे नमाकू वर्णन के बाबिल के राजा नबातकोसर का इटालियन रिसोटा रूप ओपरा के साथ ख्याति प्राप्त की थी। इस ओपरा में पुराने नियम के यरमहा विलाप गीत और भजन संगीत भजन संहिता संबंधित पुस्तकों से प्रसंग लिए गए हैं। इस ओपरा में यरूशलम को हराए जाने और यहूदियों को कैद और गुलामी के प्रसंग हैं। यर्डी के हृदय स्पर्शी प्रेरणादायक कोरस ऑफ हेब्रू स्लेव्स भजन संहिता 137 का प्रेरणादायक प्रेरणा है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस भजन का शीर्षक बहुत नाटकीय है। कैद में यहूदी बाबुल की नदियों के किनारे बैठकर रोते थे क्योंकि वे सेयोन के गीतों के गाए जाने को सहन नहीं कर सकते थे। मेरा उद्देश्य कई प्रकार की कैद और गुलामी के बारे में बात करना है। मैं हमारे समय की कुछ परिस्थितियों की तुलना यरमहा के समय में यरूशलम के पतन के साथ करूंगा। इस चेतावनी को बताते हुए मैं आभारी हूं कि गिरजे के बहुत से सदस्य इस व्यवहार से दूर रहते हैं जो यरमहा के समय में प्रभु के लिए बहुत अपमानजनक थे। यरमहा भविष्यवाणियों की भविष्यवाणियां और विलाप गीत अंतिम दिनों के संतों के लिए महत्वपूर्ण है। यरमहा और उसके समय का यरूशलम मार्मन की पुस्तक में शुरू के अध्यायों की पृष्ठभूमि है। यरमहा भविष्यवक्ता लेवी का समकालीन था। प्रभु के नाटकीय ढंग से यरमहा को उसके पहले से नियुक्त कार्य के विषय में बताया गया था। घर में रहने से पहले मैंने ही तुझे चित में लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मुझे तुझे जातियों अभिषेक ठहराया। परंतु लिया की नियुक्ति मिशन और कार्यभार से भिन्न थी। उसकी युवावस्था अवस्था में नहीं बल्कि प्रौढ़ होने पर नियुक्त किया गया था। आरंभ में उसने चेतावनी के शब्द बोले, लेकिन बाद में उसने यरमहा के समान विश्वसनीय रूप से संदेश दिया। प्रभु ने आज्ञा दी कि वह अपने परिवार को लेकर निर्जन प्रदेश में चला गया। ऐसा करके लेही न केवल अपने परिवार को बल्कि सभी लोगों को आशीष किया था। यरूशलम के विश्वास से पहले के सालों में जो यीशु को दिए थे याद के मेरी प्रजा मेरी महिमा के निकमी वस्तु बदल दिया है। उसने बहुत पहले जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने ऐसे होदे बना लिए जो टूट गए हैं जिसमें जल नहीं ठहर सकता। यरूशलम के निवासियों पर आने वाले विनाश के बारे में बोलते प्रभु ने दुख प्रकट किया था। कटनी का समय बीत गया है, फल तोड़ने की ऋतु आ गई है और हमारा उद्धार नहीं हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि पुरुष और स्त्री अच्छाई और बुराई के बीच निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों। जब बुराई किसी संस्कृति या राष्ट्र पर प्रभावशाली बन जाती है, वहां जीवन में और आने वाले जीवनों में दोनों में गंभीर परिणाम होते हैं। दोनों लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। वे स्वयं न केवल हानिकारक और लत लगाने वाले पदार्थ बल्कि हानिकारक लत लगाने वाले सिद्धांतों का केंद्र बन चलते हैं जो धार्मिक जीवन को दूर ले जाते हैं। सच्चे प्रसिद्धि और नैतिक कार्य का अधिकार में लेने लग सकते हैं। परिणाम स्वरूप कपटी अभिव्यक्तियों के बंधन के कैद हो जाते हैं। इनमें शामिल है
आत्मिक शारीरिक मानसिक कैद और सभी पर कभी कभी विनाश भी हो जाता है। यर्मिया और लेही ने सिखाया था कि जो धार्मिक हैं उन्हें प्रभु के गिरजे और राज्य को स्थापित करने और बिखरे हुए इसराइल को एकत्रित करने में मदद करनी चाहिए। ये संदेश सभी युगों में सदियों से गुजरते रहे हैं, इन पर बल दिया जाता रहा है और इस अंतिम युग में यीशु मसीह के पुनरुत्थान समाचार के हृदय में है। यहूदियों की गुलामियों और 10 जातियां सहित पुनरुत्थान सुसमाचार की मूवमेंट में सैद्धांतिक हैं। कोई भी 10 जातियां उत्तरी राज्य से बनी थी और 781 ईसा पूर्व में आईशूर में गुलाम बना लिया गया था। वे उत्तरी दिशा में चले गए थे। हमारा 10वां विश्वास अनुच्छेद बताता है, हम इज़राइल के वास्तविक एकत्रित होने और 10 जातियों की पुनर्स्थापना में विश्वास करते हैं। हम यह भी विश्वास करते हैं कि इब्राहिम के साथ बनाया गया अनुदेश अनुबंध के तौर पर न केवल इब्राहिम की संतान बल्कि पृथ्वी के संपूर्ण लोग आशीषित होंगे। जैसा कि एल्डर रसल एम नेल्सन ने बताया, एकत्रित होना किसी नैतिक जगह में नहीं है, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात है। लोगों को प्रभु के ज्ञान में बिना उनका देश छोड़े लाया जा सकता है। हमारा सिद्धांत स्पष्ट है, प्रभु ने इज़राइल की 12 जातियों को उनकी धार्मिकता और विद्रोह के कारण बिखेरा और सताया था। हालांकि संसार के राष्ट्रों में आशीषित करने के लिए भी प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को राष्ट्र में बिखेरा था। इस सुखदायक काल में हम महत्वपूर्ण सबक देते, हमारी गुलामी से ले जाए जाने वाले पाप और विद्रोह से बचने को हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि चुने हुए को एकत्रित करने और इज़राइल को वास्तविक रूप से एकत्रित करने में प्रभु की मदद करने के लिए धार्मिक जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। कैद, गुलामी, लत, दासता कई प्रकार की होती है। वास्तविक शारीरिक गुलामी भी हो सकती है, लेकिन नैतिक स्वतंत्रता को छीन जाना या हानि भी हो सकती है जो हमारे विकास को रोक देती है। यर्मिया ने यह स्पष्ट किया कि धार्मिकता और विद्रोह यरूशलेम के विनाश और बाबुल में गुलाम बना लिए जाने के मुख्य कारण थे। अन्य प्रकार की गुलामी मनुष्य की आत्मा का उतना ही विनाश करती है। नैतिक स्वतंत्रता को कई बार से दुरुपयोग हो सकता है। मैं 4 प्रकार के बारे में बताऊंगा जो आजकल समाज में विशेष रूप से घातक हैं। पहला, ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमें गुलाम बनाकर हमारी स्वतंत्रता छीन लेती हैं, नैतिक धारणाओं का विरोध करती हैं, अच्छी आदतों का निषेध, नशीली दवाएं, शराब, नश्वरता, अश्लील जीवन, अश्लील फिल्में, जुआ, धार्मिक अधीनता और अन्य उदाहरणों का प्रभाव उन पर उस गुलाम और समाज पर इतना अधिक बोझ है, इन बातों से बच पाना मुश्किल है। दूसरी बातें या इनके प्रभाव झुकाव सामान्यतः बुरी नहीं है, लेकिन ये हमारे कीमती समय को नष्ट कर सकती हैं, जिसका उपयोग हम अन्य अच्छे कामों में कर सकते हैं। इसमें शामिल है सोशल मीडिया, वीडियो गेम और डिजिटल गेम, खेल, मनोरंजन और बहुत से अन्य माध्यमों की जरूरत से ज्यादा उपयोग करना है। कैसे हम अपने परिवार के साथ समय को सुरक्षित रखते हैं, ये अधिकांश समाज में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। एक काम है जिसका हम सामना करते हैं। एक बार मैं अपने कानूनी कंपनी में गिरजे का एकमात्र सदस्य था। एक स्त्री वकील ने बताया कि वह कैसे एक बाजीगर की तरह महसूस करती थी कि 3 बॉलों को हवा में रखने का प्रयास करती थी। एक गेंद उसकी विवाह थी। उसकी बड़ी चिंता थी कि एक गेंद हमेशा जमीन पर रहती थी। मैंने उसे सलाह दी कि हम एक समूह के तौर पर बैठेंगे और अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करेंगे। हमने निश्चय किया कि हमारा काम करने का मुख्य कारण हमारे परिवार का भरण पोषण करना है। यह सहमत हुए कि हमारा धन कमाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा परिवार, लेकिन हमने स्वीकार किया कि अपने मौकों की अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करना भी जरूरी है। फिर भी हमने कामों पर जो आवश्यक नहीं थे परिवार के लिए समय बिताने में बाधक थे। क्या कार्यस्थल में अनावश्यक समय बिताने का दबाव था? हमने निर्णय लिया कि हमारा उद्देश्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परिवार के अनुकूल वातावरण बनाना होगा। आओ हम परिवार के लिए समय को सुरक्षित रखने में सबसे आगे रहें। तीसरा, हमारे समय में व्यापक अधीनता है। ऐसा संपूर्ण इतिहास में रहा है। वह है विचारधारा या राजनीतिक धारणाएं जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ मेल नहीं खाती। सुसमाचार की सच्चाई स्थान पर मनुष्य की विचारधाराओं को रखने में हम उदारकर्ता के संदेश की सरलता से भटक जाते हैं। जब हम प्रेरित पौलुस एथेंस में गया तो उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सिखाने का प्रयास किया। इस प्रयास के बारे में हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, इसलिए वे इस सब अंतेवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई बातें कहने लगे और सुनने के सिवाय किसी नए काम को नहीं समझ समय नहीं बिताते थे। जब भीड़ ने पौलुस के सरल संदेश को सरल और धार्मिक प्रवृत्ति को महसूस किया जो कि वह नया नहीं था, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। हमारे समय में दर्शाता है जब दूसरों की सच्चाई अस्कर स्वीकार कर दिया जाता है, अधिक आकर्षक रुचिकर बनाने के लिए समाज या वर्तमान विचारधाराओं को बिल्कुल के अनुकूल बनाने के लिए इन्हें बिल्कुल विकृत कर दिया जाता है। यदि हम सतर्क ना रहें तो हम इन विचारधाराओं में फंस सकते हैं और हम अपने आप को मानसिक गुलाम में डाल देते हैं। आजकल बहुत सी आवाजें जो स्त्रियों को बताते हैं कि उन्होंने कैसा रहना चाहिए, वे एक दूसरे से असहमत हैं। विशेष रूप से चिंता करने के लिए वे धारणाएं हैं जो स्त्रियों के लिए सम्मान की आलोचना करती हैं। इसे काम करती है जो बच्चों या शिक्षक पोषण करने के लिए या मतलब चुनाव करती हैं। मेरी 8 महीने पूर्व सबसे छोटी पोती प्रत्येक बहते हफ्ते में थी। मैं घर पर था और मैंने उसके लिए दरवाजा खोला। मेरी पत्नी मेरी एक दूसरे कमरे में थी। दोनों बार गले मिलने के बाद उन्होंने दोनों ने लगभग एक ही बात कही। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर उनसे पूछा, दादी मैं घर आना पसंद करती हूँ, दादी कहाँ है? मैंने उनसे कहा कि दादी मैं कहा, लेकिन मैं सोच रहा था क्या दादा का भी घर नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह लड़का जब मैं लड़का था परिवार के दादी घर जाता था तो मैं पहचाने गीत के साथ मिल गया है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि स्त्रियों का उपलब्ध शैक्षिक और अन्य अवसरों को देखकर मैं रोमांचित हूँ। मैं इस सच को समझौता हूँ कि कमर तोड़ने वाले घरेलू काम जो स्त्रियों को करने पड़ते हैं आधुनिक सुविधाओं के कारण वे संसार में कम हो गए हैं और स्त्रियां कार्य के हर क्षेत्र में शानदार योगदान दे रही हैं। लेकिन हम अपने समाज को उस विशेष संबंध को कम करने देते हैं जो बच्चों का माँ और दादी का अन्यों के साथ होता है जो उनका पोषण करती हैं। हम इसके लिए पछताना पड़ेगा। चौथा, मजबूर किया जाना जो कि निष्ठा से थामे धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है गुलामी का कारण बन सकता है। इसका एक घिनौना रूप है जब धार्मिक लोगों को जो अपने व्यवहार के लिए परमेश्वर के प्रति जवाबदेही महसूस करते हैं ऐसी गतिविधियों करने के लिए मजदूर करना जिसके लिए उनकी आत्मरक्षा में करती है। जैसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उनकी आत्मरक्षा के विरुद्ध गर्भपात कराने में सहायता करना या इनक्वायरी से करना। गिरजे की अपेक्षाकृत छोटा अल्पसंख्यक समूह है जो बेशक इस समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर भी बड़े पैमाने पर समाज को बदल पाना कठिन है। लेकिन हमारे आसपास के समाज में नैतिक सुधार करने के लिए कार्य होते रहने चाहिए। प्रत्येक दिशा में अंतिम तिथियों के संतों को अच्छे नागरिक होना चाहिए, नागरिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। स्वयं के मेरे चार जोर उत्पार परिवार और उभरती पीढ़ी को बचाने के लिए कोई भी आवश्यक काम बलिदान करने होना चाहिए। उनमें से बहुत से लोग किसी भी प्रकार के गंभीर व्यसनों और झूठी धारा के गुलाम बने होते हैं। हम उन्हें उस संसार से बचाव का टीका लगाने में मदद करनी चाहिए जो बहुत कुछ यरूशलेम के समान थे। यरमा लेन ने अनुभव किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पवित्र अनुभव बनाने में और तैयार रखने को तैयार थे और प्रभु के विषय में दूत बनकर उसका गिरजा स्थापित करने में मदद करनी, सभी स्थानों पर बिखरे हुए इज़राइल और प्रभु के चुने हुए लोगों को एकत्रित कर, जैसा कि सिद्धांत और अनुभव बताता है, धर्मियों को सभी राष्ट्रों में एकत्रित किया जाएगा और अनंत आनंद का गीत गाते हुए वे सियोन आएंगे। हमारी चुनौती किसी भी प्रकार से गुलामी से बचना है, उसके चुने हुए को एकत्रित होने में प्रभु की मदद करना, उभरती पीड़ा के लिए बलिदान करना है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने आप को नहीं बचाते, हम प्रेम अनुग्रह उदारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा मुक्त किए जाते हैं। जब लेही का परिवार भाग निकला था, प्रभु की ज्योति द्वारा उनका मार्गदर्शन हुआ था। यदि हम उसकी ज्योति के प्रति सच्चे रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उसकी योग्यता पर भरोसा करते हैं तो हम आत्मिक शारीरिक मानसिक गुलामी के साथ साथ अपने स्वयं के निर्जन प्रदेश में भटकने के दुखों से भी बच जाएंगे, क्योंकि बचना हमारी में पराक्रमी है। आओ हम उनको निराशा और दुख से बचाएं जो कैद में जकड़े हुए हैं, जो सियोन के गीत के गाए जाने के कारण सहन नहीं कर सकते। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
As the children in sacrament meeting happily sang the primary
जैसे बच्चे प्रभु भोज सभा में आनंद के प्राथमिक का गीत गाते हैं, लव इज स्पोकन हियर, जागते हैं सभी की मुस्कान स्वीकृति देती है, एक साहसी माँ पांच बच्चे को जिन्हें पाला पोसा दूसरी आयत को ध्यान से सुन नहीं नती है, मेरा घर जहाँ पर हर घंटे आशीषित होता है पुरोहित शक्ति द्वारा, वह उदासीनता से सोचती है मेरे बच्चों का भी ऐसा घर होगा। मेरा संदेश इस विश्वासी महिला और सभी के लिए हर घंटे जी सकते हैं, पुरोहित शक्ति के बल के द्वारा आशीषित हो सकते हैं, हम पृथ्वी कुछ भी क्यों ना हो, पुरोहित के में शक्ति परमेश्वर की शक्ति और अधिकार उद्धार और सारी आशीष पुरुषों स्त्रियों और बच्चों के लिए दी गई है। एक आदमी पर्दा खोलता है ताकि सूरज की किरणें कमरे के अंदर आएं, परंतु आदमी ना तो सूरज या किरणों या उनकी गर्माहट को अपना बना सकता है। पुरोहितों की आशीषें असल में बहुत ज्यादा हैं। उससे जिससे उपहार देने के लिए पूछा जाता है इस जीवन में और अगले में आशीषों शक्ति और पवित्रता को पाना नश्वरता की एक उत्तम अवसर और जिम्मेदारियां हैं। जैसे हम योग्य होते हैं, पवित्रता की धर्म विद्या हमारे जीवन को धरती पर खुशहाल करती हैं और संसार के अद्भुत वादों के लिए तैयार करती है। प्रभु कहता है धर्म विद्या में परमेश्वर की शक्ति को जागर करती है। यहाँ विशेष आशीषे हैं परमेश्वर की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिन्होंने बपतिस्मा पवित्र आत्मा और प्राप्त किया है और नियमित रूप से प्रभु लेते हैं। मंदिर अतिरिक्त ज्योति और बल को लाता है अनंत जीवन के वादे के साथ। सारे धर्म विधियां यीशु मसीह के में हमारे विश्वास को बढ़ाने और परमेश्वर के साथ अनुबंधों को बनाने और पालन करने में आमंत्रण करती है। जैसे हम ये पवित्र अनुबंध का पालन करते हैं, हम पवित्र शक्ति की आशीषों को प्राप्त करते हैं। क्या हम इस पवित्र शक्ति को हमारे अपने जीवन में महसूस करते हैं और जो इन अनुबंधित गिरजा के सदस्यों को देखते हैं, हम देखते हैं इन नए परिवर्तनों में जैसे वह बपतिस्मे के पानी से आते हैं क्षमा का और शुद्धता को महसूस करते हैं। हम देखते हैं बच्चे और युवा अधिक सदशील होते हैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन प्रोत्साहन से। हम देखते हैं मंदिर की धर्म विधियां शक्ति का प्रकाश बनती है और संसार भर में योग्य पुरुषों और स्त्रियों के लिए ज्योति है। पिछले महीने मैंने एक युवा दंपति को मंदिर में मुहरबंद किए वादों की विशाल शक्ति को देखा था जो उनके मूल्य बच्चे के जन्म पर तुरंत, परंतु वह सिर्फ एक हफ्ते ही जिया था। पुरोहित्य की धर्म विधियों के द्वारा हम आराम बल सुरक्षा शक्ति और अनंत व को प्राप्त करते हैं।
Some may sincerely ask the
कुछ ईमानदारी से प्रश्न करते हैं यदि पुरोहित की आशीष और शक्ति सबको उपलब्ध हैं, तो पुरोहित की धर्मविधियों का प्रबंध करना केवल पुरुषों के लिए क्यों है। जब एक दूत ने नेहमिया से पूछा क्या तुम परमेश्वर की कृपा को जानते हो, नेफी ने ईमानदारी से उत्तर दिया मैं जानता हूँ वह अपने बच्चों से प्रेम करता है, फिर भी मैं सभी बातों का अर्थ नहीं जानता। जब हम पुरोहित्य के बारे में बोलते हैं बहुत सी बातें हैं हमें जानने के लिए। हम जानते हैं परमेश्वर अपने सभी बच्चों से प्रेम करता है और वह किसी का पक्ष नहीं करता, अपने आप आने वालों में से वह किसी को अस्वीकार नहीं करता, स्त्री हो या पुरुष उसके लिए सब एक समान है।
We know that gender is an essential characteristic of both mortal and eternal identity and purpose. Sacred responsibilities are given to each gender. We know that from the beginning the Lord established.
हम जानते हैं कि शुरुआत में प्रभुत्व ने स्थापित किया था कि प्रभुत्व का प्रबंध कैसे होगा। प्रभुत्व अपने पहले आदम को दिया गया था। नूह, अब्राहम और मूसा सभी ने पवित्र धर्मविधियों का प्रबंध किया था। यीशु मसीह महान उच्च याचक और हैं। उन्होंने प्रेरितों को बुलाया था, तुम ना मुझे नहीं चुना, उसने कहा, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पत्रस, याकूब और यूहन्ना ने पुरोहित को धरती का पुनस्थापित भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा किया गया। इसलिए इसी तरह से स्वर्गीय पिता ने उसकी पुरोहित का प्रबंध किया था। हम जानते हैं कि पवित्र पुरोहित की शक्ति अकेले विश्वास, पवित्र आत्मा और आत्मिक उपहारों से काम नहीं करती। धर्मशास्त्र सावधान करता है, परमेश्वर के उपहारों को बहुत से होने के कारण अस्वीकार मत करें। यह कई तरह से दिए जाते हैं, परंतु इन सब में उसी एक परमेश्वर का हाथ है। हम जानते हैं कि योग्यता पुरोहित धर्मविधियों को करने के और पाने का केंद्र बिंदु है। बहन लिंडा के बर्टन ने कहा था, योग्यता को बनाने वाला पुरोहित शक्ति का हमारे जीवन में निमंत्रण दिया है। उदाहरण के लिए सोचें, अश्लीलता की महामारी सारे संसार भर में अधुंध फैल गई है। प्रभु का योग्यता का स्तर कोई भी अश्लीलता लिए अनुमति नहीं देता, और उसके बीच में जो पुरोहित धर्मविधियों को चलाते हैं, उद्धारकर्ता ने कहा, गुप्त धर्मित कर्मों के लिए पश्चाताप करो। शरीर का दिया आंख है, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हों, तो तेरा सारा शरीर भी अध्यंश नारा होगा। जो कोई भी को लालसा से देखेगा, वे उसके साथ हृदय में व्यभिचार करता है। अयोग्य प्रभु भोज का प्रबंध करता या बांटता है, बीमार को आशीष देता या प्रवृत्तियों के दूसरे धर्मविधियों में भाग लेता हो। एल्डर डेविड एबेडनर ने जैसा कहा था, वह परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेता है। यदि कोई अयोग्य हो, उसे पुरोहित धर्मविधियों से हटा देना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक उसके धर्मयात से बात कर पश्चाताप के पहला कदम लेना है और आज्ञाओं की तरफ लौटना है। हम जानते हैं कि पुरोहितों की शक्ति परिवारों के लिए अत्यधिक है, जहां माता और पिता अपने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए एक होते हैं। परंतु हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर यह सभी समान आशीषों को अन्य परिस्थितियों में भी देता है। एक माँ अपने परिवार के लिए दोनों आत्मिक और अस्थायी बोझ को उठाती है, संवेदनशीलता से बताती है कि घर शिक्षक का उसके एक बच्चे को आशीष देने के लिए बुलावा मानता है, परंतु वह दूरदृष्टि से कहती है कि इनकी मानवता अब आवश्यक नहीं है, कि उसके घर शिक्षक उसके बच्चे को आशीष देने को तैयार रहते हैं। हम जानते हैं कि पुरोहितों की कुंजियां प्रथम अध्यक्षता के सदस्यों और 12 पुरोहित के परिषद के पास होती हैं, प्रभु के काम के लिए पृथ्वी पर निरीक्षण करती हैं। विशेष पुरोहित कुंजियां स्टेक अध्यक्षों और बिशप को उनके क्षेत्रों के जिम्मेदारियों के लिए प्रदान की जाती है। वे पुरुषों और स्त्रियों को प्रतिकरण द्वारा बुलाए जाते हैं, जिन्हें समर्थन किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। प्रतिनिधि अधिकार से शिक्षा देते हैं और प्रबंध करते हैं का अभ्यास करते हैं। जबकि हम पुरोहितों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अश्वता की दृष्टि से देखें, परमेश्वर के कामों को हमेशा से पूरी तरह समझ नहीं पाते, परंतु उसका कोमल स्मरण करना है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यह हम यकीन दिलाते हैं कि समय के साथ और अनंत दृष्टिकोण से हम जो चीजें आज जैसी हैं और उनके प्रेम और उसके अधिक पूर्णता को समझते हैं। हम सभी इच्छा अनुसार सेवा करते हैं, कभी कभी हम भुलाहट से काम समझते हैं और कामना करते हैं हमसे पूछा जाएगा और अधिक करने को। अन्य समय में हमारे आभारी होते हैं जब हमारे मुक्ति होती है। हमें मिली अपनी बुलाहट का निर्णय नहीं करते। मैंने यह सब शादी के शुरू के दोनों दिनों में सीखा था। कैथी और हम कैसा कर सकते हैं, मैंने पूछा। हमारे पास छोटे बच्चे हैं, सेमिनारी सुबह 5 बजे शुरू होती है और मैं वार्ड में युवा पुरुष का अध्यक्ष हूँ। सलाहकार मुस्कुराते हुए और कहा, सब भी सही होगा भाई एंडरसन, हम उनसे बातें करेंगे और आपको मुक्त करेंगे। और वैसा ही हुआ था। सच्चाई से और विचारों को सुनते हुए और जीवन संबंधी चिंता करती हुई स्त्री की आवाज शादी में और परमेश्वर के राज्य को बनाती है। 20 साल पहले जनरल सम्मेलन में एल्डर एम रसल बारड ने एक बातचीत में जो उनके और सहायता स्थल के जनरल अध्यक्ष को संबोधित किया था, वह प्रश्न उठा था कि योग्य युवाओं को कैसे मिशन सेवा के लिए तैयार करें। बहन एल जैक ने मुस्कुराते हुए कहा था, आप जानते हैं अल्बर्ट, गिरजे की महिलाओं भी कुछ अच्छे सुझाव दे सकती हैं। हम उनकी माए हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के जीवन भर का इतिहास रहा है पूछने के लिए स्त्री ने के बारे में चिंता करने का। स्त्री जिसने उन पर प्रभाव डाला था वह बहन फ्रांसिस मॉन्सन है। हम सब उन्हें याद करते हैं। अध्यक्ष मॉन्सन ने हाल ही में जनरल अधिकारियों को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने अपनी वार्ड को 84 विधवाओं से सीखा था। उन्होंने उन के बिशप सेवकाई पर के रूप में और सारे जीवन में प्रभावित किया था। हैरान ना हो, अध्यक्ष मॉन्सन ने प्रार्थना पूर्वक प्रचार सेवा की आयु में परिवर्तन करते और जनरल सहायता युविता और प्राथमिकता अध्यक्ष के साथ। बिशप, आप अध्यक्ष मॉन्सन के उदाहरण का अनुसरण करें। आप प्रभु की आशीष का हाथ का मार्गदर्शन अपने पवित्र काम बाहु से महसूस करेंगे। हमने कई सालों में ब्राजील में रहे थे। आने के तुरंत बाद मैं एडिलसन पैरला से मिला था जो 70 के सेवा कर रहे थे और उनका भाई एडिसन जो हमारे स्टेक अध्यक्ष करते थे। बाद में मैं उनके भाई एल्सन से मिला था। मैंने उनके माता पिता से पूछा। एल्सन पहला ने पहले कहा, पहले तो पिता गिरजा से जोड़ने से बहुत अधिक प्रसन्न थे, यहाँ तक जल्दी ही वह कम सक्रिय हुए और हमारी माँ से गिरजा जाने के लिए मना करने लगे थे। एडिलसन ने मुझे बताया कि उनकी माँ पड़ोसियों के कपड़े सिलकर उनको गिरजा जाने की बस का किराया देती थी। चार छोटे लड़के एक साथ चलते हुए दूसरे शहर मीलों तक चलकर जाते हैं। बस में 45 मिनट तक और फिर 20 मिनट तक पैदल चैपल जाते थे। यद्यपि गिरजा जाने में असमर्थन, वह अपने बच्चों के साथ बहन परेला धर्मशास्त्रों को अब उनके बेटे और बेटियों के साथ पढ़ती, उन्होंने सुसमाचार सिखाती और उनके साथ प्रार्थना करती। उनका दिन घर प्रवृत्तियों की शक्ति की बहुत ही आशीषों के साथ भर गया था। छोटा लड़का और बड़े हो गया, मिशन सेवा की पढ़ाई की और मंदिर में विवाह किया। पुरोहित्य की शक्ति की आशीषों से उनका घर भर गया था। सालों बाद एक एकाही बहन वानी द पाला पैरला मंदिर में अपने स्वयं के एंडाउनमेंट के लिए प्रवेश की थी। बाद में 3 मिशन ब्राजील में सेवा की थी। अब 84 वर्ष की हैं। उनके विश्वास में लगातार में बने रहने से उनके पीढ़ियां आशीर्वादित होती हैं। I testify as you worthily participate in the ordinances of the priesthood. The Lord will give you greater strength, peace, and eternal perspective. Whatever your situation, your home will be blessed. कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके घर पुरोहित शक्ति में आशीष होंगे और आपको जैसे नजदीक हैं पूरी तरह से इन आशीषों को आप अपने पाने के लिए चाहेंगे। पुरुष और स्त्रियां, बहनों और भाइयों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। यह हमारा सुस अवसर है, हमारी जिम्मेदारी और हमारी आशीष। यह हमारी नियति है परमेश्वर के राज्य की तैयारी करना उद्धारकर्ता के वापस आने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
We are grateful beyond any measure of expression for teachers throughout the church.
We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं और हमें आप पर विश्वास है. आप पुनर्स्थापित सुसमाचार के महानतम उपहारों में से एक हैं. सुसमाचार का सफल शिक्षक बनकर परमेश्वर की शक्ति और अधिकार से सीखने के पीछे अवश्य ही एक भेद है. मैंने शब्द भेद का उपयोग किया है क्योंकि जिन सिद्धांतों पर एक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है केवल उनके द्वारा समझी जा सकती है जिनके पास 1820 की बसंत की उस सुंदर सुबह को हुई घटना की गवाही है. 14 साल के बालक की विनम्र प्रार्थना के जवाब में स्वर्ग खुल गया था. अनंत पिता परमेश्वर का उनका पुत्र यीशु मसीह प्रकट हुए और भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ से बात की. चिर प्रतीक्षित सब बातों का सुधार आरंभ होने लगा था और प्रतिकरण की रीति हमारे युग में हमेशा के लिए स्थापित की गई थी. संसार के लिए जोसेफ स्मिथ के संदेश और हमारे संदेश को इन शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है. परमेश्वर बातचीत करता है. उसने अतीत में बात की थी. उसने जोसेफ से बात की थी और वह सिखाते समय आपसे बात करेगा. ये बात आपको संसार के अन्य शिक्षकों से अलग करती है इसलिए आप असफल नहीं हो सकते हैं. आपको भविष्यवाणी और प्रकटीकरण की भाषा और पुरोहित्य अधिकार द्वारा नियुक्त किया गया है. इसका क्या अर्थ है? पहला, इसका अर्थ है कि आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं. आप उसके प्रतिनिधि हैं और उनको आपका प्रतिनिधि और उसके स्थान पर काम करने का अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है. उसके प्रतिनिधि के रूप में आप उसकी सहायता पाने के अधिकारी हैं. आपको अपने आप से पूछना चाहिए, यदि आज मेरी शिक्षा को उधारकर्ता सिखा रहा होता तो क्या कहता और इसे कैसे कहता? आपको वैसा ही करना चाहिए. इस जिम्मेदारी के लिए लोग अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं या कभी कभी भयभीत भी हो सकते हैं. ये कार्य कठिन नहीं है. प्रत्येक योग्य लैटर-डे सेंट को उद्धारकर्ता के तरीके से सिखाने के लिए प्रभु ने मार्ग तैयार किया है. दूसरा, आपको यीशु मसीह के सुसमाचार को सिखाने के लिए नियुक्त किया गया है. आपको अपने विचारों या अवधारणाओं को नहीं सीखना चाहिए, न ही इन्हें धर्मशास्त्रों से मिलाएं. सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है और केवल सुसमाचार के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं. तीसरा उनको उन सुसमाचार के सिद्धांत सिखाने की आज्ञा दी जाती है जो धर्मशास्त्रों से हमारे समय के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के वचनों से जो पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया है उसे सीखना. तो हम कहाँ से आरंभ करें? इस प्रकार का जीवन जीना हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा को अपने मार्गदर्शन और साथी के रूप में प्राप्त कर सकें. जब हायरन स्मिथ ने अंतिम दिनों के कार्य में भाग लेने की इच्छा जाहिर की तब प्रभु ने उससे कहा था कि तन मन और शक्ति से उसकी आज्ञा का पालन करना उसका कार्य था. यहीं से आरंभ करने की जरूरत है. प्रभु द्वारा हायरन ने दी गई सलाह वही सलाह है जो प्रत्येक युग में संतों को देते आए हैं. शिक्षकों के बारे में बोलते हुए प्रथम अध्यक्षता ने कहा था, आपकी प्रतिदिन की आत्मिक तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रार्थना, धर्मशास्त्र अध्ययन और आज्ञाओं का पालन है. हम आपको पहले से ही कई उद्देश्य के साथ सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए कटिबद्ध होने के लिए उत्साह करते हैं. ये महत्वपूर्ण है कि प्रथम अध्यक्षता ने यह नहीं कहा कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए पाठ को अच्छी तरह करना सीखने की विभिन्न विधियां जरूरी होती हैं. अवश्य ही आपको प्रत्येक पाठ को परिश्रम से तैयार करना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए कि आप कैसे सिखाएं ताकि आपके विद्यार्थी उनकी सुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करें और सुसमाचार को उनके हृदय में दाखिल होने दें. लेकिन आपकी सेवा से सबसे पहले महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी व्यक्तिगत आत्मिक तैयारी है. आप जब इस सलाह का अनुसरण करते हैं, प्रथम अध्यक्षता ने वादा किया है पवित्र आत्मा आपको जानने में मदद करेगा कि क्या करना है. आपकी स्वयं की गवाही का विकास होगा, आपका परिवर्तन गहरा होगा और जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको बल मिलेगा. शिक्षक किन आशीषों का आशा कर सकता है? आगे प्रभु ने आगे दी है कि इससे पहले कि हम उसके वचन की घोषणा करने का प्रयास करें, हमें इस प्राप्त की करने का अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आपको परिश्रम से धर्मशास्त्र में खोज करते हुए और इन्हें अपने हृदय में संजोकर रखते हुए अधिक समझदार पुरुष और महिला बनना चाहिए। फिर जब आप प्रभु की मदद मांगते हैं तो वह आपकी आत्मा और वचनों से तुम्हें आशीषित करेगा। पौलुस हमें सिखाता है कि सुसमाचार मनुष्य के पास दो तरीके से आता है, वचन में और सामर्थ्य में। सुसमाचार के वचन धर्मशास्त्र में लिखे हैं और हम वचन को परिश्रम से खोज कर पाते हैं। सुसमाचार का सामर्थ्य उनके जीवनों में आता है जो इस प्रकार जीवन जीते हैं कि पवित्र आत्मा उनका साथी होता है और वे उन प्रेरणाओं का पालन करते हैं जो उन्हें मिलती है। जो कुछ केवल वचन को पाने पर अपना ध्यान लगाते हैं और वे सूचना में माहिर बन जाते हैं। अन्य लोग तैयारी करने की अनदेखी रखते हैं और आशा करते हैं कि किसी प्रकार प्रभु कक्षा के दौरान उनकी मदद करे, और आप हम आशा नहीं करते कि आपको आत्मा उन धर्मशास्त्र और सिद्धांतों को याद करने में मदद करेगी जिनका अध्ययन या विचार आपने नहीं किया है। सुसमाचार को सफलता से सीखने के लिए आपके अपने जीवन में सुसमाचार के जीवन और सामर्थ्य दोनों ही होने चाहिए। आलमा ने वे बहुत ही समझदार थे और उन्होंने निष्ठापूर्वक धर्मशास्त्र में खोज की ताकि वे प्रभु के वचन को जान सकें, परंतु यह सब कुछ नहीं था। उन्होंने प्रार्थना और उपवास किया, इसलिए उनके पास प्रतिकरण की आत्मा थी। आगे आपको सुनना और सीखना चाहिए। एल्डर हॉलैंड ने प्रचारकों को सिखाया था, मैं एल्डर हॉलैंड के विचारों को दोहराऊंगा, लेकिन मैंने प्रचारक और जांचकर्ता शब्दों के स्थान पर शिक्षा और विद्यार्थी शब्दों को बदला है। शिक्षकों के पास केवल आत्मा और सुनने की जिम्मेदारी के बाद दूसरी जिम्मेदारी विद्यार्थी को सुनना है। यदि हम आत्मिक कानों से सुनते हैं तो हमारे हृदय हमारे विद्यार्थी में हमें बताएंगे कि किन पाठों को उन्हें सुनने की जरूरत है। एल्डर हॉलैंड ने आगे कहा था, सच्चाई यह है कि अपने विद्यार्थी पर व्यक्तियों के तौर पर ध्यान एकत्रित करने के साथ एक शिक्षा अभी असुविधापूर्वक बार बार दोहराए जाने वाले पाठ को देने का केंद्र रहते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं को और पाठ को तैयार करने के बाद हमें पवित्र आत्मा को पाठ सिखाने देना चाहिए। जब पवित्र आत्मा की प्रेरणाएं मिलती हैं, हमें रेखांकित किए गए वाक्यों और विवरणों को एक तरफ रख देना चाहिए और जो आत्मा की प्रेरणा हमें बताती है उसे सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाठ सीखते हैं और उसके पाठ ना होकर उद्धारकर्ता का पाठ बन जाता है। जब आप स्वयं को सुसमाचार जीने की महान उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं और धर्मशास्त्र और अध्ययन करते हो, इन्हें अपने हृदय में रखते हो, तो यही पवित्र आत्मा जिसने प्राचीन काल में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर इन शब्दों को प्रकट किया था, इन शब्दों की सच्चाई पर आप प्रकट करेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा इन्हें आपको नए सिरे से बताएंगी। जब ऐसा होता है तो जिन शब्दों को आपने अध्ययन किया है वे नफिया पोलुस या आलमा के शब्द नहीं रह जाते, परंतु वे आपके शब्द बन जाते हैं। फिर जब आप सिखाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सब बातों को सिखाएंगी और सब बातें आपको स्मरण कराएंगी। जब ऐसा होता है तो उसी क्षण स्वयं जान जाओगे कि आपको क्या कहना है। यदि आप पर ध्यान देते हैं तो जो आप सीखते हैं उन बातों आप भी कुछ सीखेंगे। अध्यक्ष मेरियन जी रोमनी ने कहा था, मुझे हमेशा पता है कि कब मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ मैं हमेशा उससे कुछ सीखता हूँ। अंत में जो आप सिखाते हैं आपको उसका स्वयं गवाही होना चाहिए, ना कि पुस्तकों के शब्दों को या किसी अन्य के विचारों को दोहराना चाहिए। जब आप मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं और सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए पहले से अधिक समर्पित करते हैं तो पवित्र आत्मा और आप पर प्रकट होकर बताएगी कि जो आपको सीख रहे हैं सच हैं। ये प्रकटीकरण की आत्मा है और यही आत्मा आपके संदेश को उनके हृदयों में ले जाएगी जो इच्छा रखते हैं और सीखना चाहते हैं। आओ हम वहां पर समाप्त करते हैं जहां से आरंभ किया था। पवित्र उपवन जो उस स्थान में उस सुंदर बसंत में की सुबह को हुआ था, उसके कारण आप परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार के साथ सिखाने के योग्य हैं। इसकी मैं अपनी पवित्रता और निष्पक्ष गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Choir and congregation.
अब गायक मंडली और सभा खड़े होकर कॉल टू सर्व गाएगी। गीत गाए जाने के बाद 70 के हम एल्डर केविन एस हैमिल्टन, एड्रियन ओचोवा और टेरेस एम विंसन को सुनेंगे। उनके बाद 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर रसल एम नेल्सन हमारा संबोधन करेंगे।
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very
पिता को वो दिन यह एक घटना घंटा याद है जैसे जिसमें उनके उनका परिवार पिता माता और चार बच्चे गिरजा छोड़कर चले गए थे। बहुत से इस जीवन में दोबारा कभी नहीं लौटे। एक सुंदर वसंत ऋतु के दिन रविवार आराधना सभा से लौटकर और एक साथ दोपहर का खाना खाते उसकी माँ और उसके पिता की तरफ मुड़कर सावधानता से पूछा, अच्छा प्रिय तुम क्या सोचते हो कि इस दोपहर हमें प्रभुजो समा में जाना चाहिए या परिवार के शहर के सैर के ले जाना चाहिए। सुझाव था कि वह पर प्रभु सभा में जाने का विकल्प मेरे पिता के लिए भी कभी नहीं आया था, लेकिन वह और उनके तीन युवस्थाओं के संगे भाई बहन उठकर बैठ गए और ध्यान देने लगे,
safety, security, and blessings, and onto a different path. As a lesson to those of our day,
सबक के तौर पर हमारे दिन के वह जो शायद दूसरे मार्ग चुनने को लोभित होते हैं, मार्मन की पुस्तक में भविष्यवक्ता लेही ने अपने परिवार के साथ दूरदर्शन बांटा और जहां उन्होंने अपने परिवार के असंख्य लोगों को देखा जिनमें से वह बहुत से लोग उन पाथ पर आगे बढ़ने की चेष्टा करने थे जो उस वृक्ष तक आया था जिनके निकट में मैं खड़ा था, और वे उस पथ पर आने लगे और आके सफल हुए और वृक्ष तक आए। और लिहाई ने देखा एक दूसरे को आगे आने की चेष्टा करते हुए जो उस पथ पर आगे आए और जिन्होंने लेही को छोड़ को पकड़ लिया और उसे पकड़े हुए उस गहन अंधेरे में आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्होंने आकर उस वृक्षों के पालन को फलों को खाने में हिस्सा नहीं लिया। और एक बड़े महल को देखा कि वे उसकी खिल्ली उड़ाने के भाव से उनकी उंगली उठा रहे थे जिसके आकार उस वृक्ष के फल खाने में भाग लिया था। ये लोग तब वृक्षित पर्थों से परजागे चलकर खो गए और अनुच्छिक अनंत तक रहे। वह इसलिए इस तरह तीसरा समूह ना सिर्फ सफल होकर जीवन के वृक्ष तक पहुंचा, वे बाद में गिरे भी नहीं। इसमें धर्मशास्त्र कहता है कि उन्होंने भीड़ों को आगे बढ़ते देखा और जो लोहे की छड़ पर कछोर पकड़ रखा जो लगातार छड़ को पकड़ते हुए बढ़ती गई और वृक्ष के फलों पर टूट नहीं पड़ी और उन्होंने उसे भाग नहीं लिया।
About this group of people, Elder David
ऐसे समूह के लोगों में एल्डर बेडनार ने बताया सिखाया एक आयत में कुंजी शब्द है मजबूती से पकड़ रहे लोहों की छड़ को। शायद तीसरे समूह ने लगातार पढ़ते और ध्यान अध्ययन करते और महिषी के शब्दों को खोजते रहते थे। ऐसे समूह को आपको और मुझे जोड़ना चाहिए। हम में से जो परमेश्वर के गिरजे के सदस्य आज यीशु मसीह का अनुसरण करने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का अनुबंध बनाते हैं, मत्तयुसमय के समय उद्धारकर्ता के गवाह के रूप में खड़े होने का अनुबंध करते हैं, निर्बल और जरूरतमंद को मदद करने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला और जरूरत से पश्चाताप करने की, जैसे कि एक प्रेरित पौलुस ने कहा था, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से राहित हैं। प्रत्येक सप्ताह हमारे पास प्रभु भोज सभा में जाने का मौका है जहां हम इन अनुबंधों का नवीनकरण प्रभु भोज धर्म विधि में भाग लेकर रोटी और पानी लेकर सकते हैं। यह साधारण क्रिया हमें एक बार फिर से यीशु मसीह का अनुसरण करने और उसके जब कोई गलती करते हैं तो पश्चाताप करने का और अपने पश्चाताप को लेने में अनुमति करती है। परमेश्वर ने वादा किया है कि हमें revelation and testimony come when we attend our Sunday church meeting. पापों से मुक्ति करेगा जैसे कि हम गिरजा की भाग लेते हैं, एक धारण करते हैं, एक हमारे एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, हम अपने मित्रों और परिवार के साथ हमारे संबंधों को नवीन करते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने और पुनस्पर्श संचार के बारे में सीखने से। एक कह सकते हैं परिवार के तीन सभाएं क्यों और प्रत्येक में हिस्सा लेना क्यों जरूरी है। चलिए संक्षेप में तीनों को देखते हैं। प्रभु धर्म विधि के भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं। आत्मा को अधिकता से पाते हैं। प्रवित आत्मा के द्वारा हमें अतिरिक्त आशीषों का निर्देशन और अच्छा उदाहरण मिलता है। रविवार विद्यालय अनुमति देता है राज्य के सिद्धांत को एक दूसरे को सिखाने का ताकि हम एक दूसरे को अच्छे उदाहरण बने और आनंद कर सकें। महान शक्ति व्यक्तिगत शक्ति आती है और सिद्धांतों और पुनः स्थापित सुसमाचार को सुनाते हैं। वृक्ष सभा का समय पुरुषों और युवा पुरुषों के लिए अपने कर्तव्य को सीखें और पूरी तरह से अधिक निर्देशन पा सकें और गिरजे की महिलाओं के उनके विश्वास को बढ़ाने का मौका प्रदान करें। परिवार और घरों को में शक्ति देने और जरूरतमंदों की सहायता करना है। इसी तरह हमारी पूरी युवतियां और बच्चों कि अपनी अपनी सभाएं और कक्षाएं होती हैं। प्रत्येक सभा अनोखी है, परंतु जोड़ी सभाएं हैं। हम सिद्धांतों को सीखते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं, जबकि वह पर शायद दूरी, यातायात की कीमत या स्वास्थ्य का अपवाद हो सकता है। हमारे सारी सभाएं को भाग लेना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि बड़ी खुशी के आशीष और 3 घंटे की सभा का कार्यक्रम में उपवासन करने में आती है। हमारे परिवार ने हमेशा सारी रविवार सभाओं में भाग लेने की वाचा की है। हमने पाया कि हम विश्वास मजबूत और सुसमाचार के समझ गहन होती है। हम सीखते हैं हमारे गिरजाघर के सभाओं में जानने का निर्णय और बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हम यहाँ तक कि छुट्टी या यात्रा पर भी रविवार सभाओं में भाग लेते हैं। हमारी एक बेटी हाल ही में लिखता है कि उसने घर में गिरजा में भाग लिया था जहां यात्रा पर कही गई थी। हाँ पापा, मैंने सभी तीनों रविवार सभा में भाग लिया था। वहां हमेशा कुछ अच्छी गतिविधियां होती रहती हैं। हमने गिरजा की उपस्थिति के लिए अच्छा चुनाव करने के लिए त्याग कर सकते हैं। यही सच है, एक तरह से किसी विपत्ति की हमारी आत्मा को धोखा देता है। वह अच्छी गतिविधियों के एक वर्ष में अच्छी और उसी तरह बेहतरीन गतिविधियों का प्रयोग करता है। मजबूती से लोहे की छड़ को पकड़े रहे का अर्थ है कि हमारे रविवार के सारी सभाओं में भाग लें। प्रभुभोज सभा, रविवार विद्यालय और पुरोहित या सहायता सभाएं। हमारे बच्चे और युवा अपनी अपनी आदरणीय सभाओं में भाग लेते हैं, प्राथमिकता युवा पुरुष और युवताएं। हमें कभी के भी चुनाव नहीं करना चाहिए कि किस सभा में जाना है। हमें सिद्धांत है, हमें परमेश्वर के वचनों को मजबूती से पकड़े रहने का धारण करने और सभी सख्त भाषाओं को लेकर हमें दी जाती है। मजबूती से लोहे के पकड़ कर रहें कि हमारे परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना है, दैनिक और पारिवारिक प्रार्थना करनी है और रोज धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है।
Confirming gift of the Holy Ghost, which serves as a guide and comforter, and then, as Nephi taught, we.
जैसे मार्गदर्शन और राम ने देखा है कि जैसे नफी ने सिखाता है, हमें आगे बढ़ते रहो, मसीह की वाणी का प्याला पीते जाओ अपने वचन के अंत तक। मजबूती से पकड़े रहना मसीह के दान का भाग लेना, जैसे मार्मा ने सिखाया कि हमें यीशु मसीह के विश्वास अध्यक्ष पापों से पश्चाताप करना और हमारा हृदय परिवर्तन करना और अनुसरण हुए बत्तीसवे में पवित्र आत्मा के उपहार पुष्टिकरण का प्राप्त करना और जो सेवा करता है जैसे मार्गदर्शन और आराम देने वाले के रूप में। और तब जैसे नफी सिखाता है, हमें आगे बढ़ते और मसीह की वाणी का प्याला पीते जाओ अपने अनंत जीवन तक। मेरे पिता ने भाग्यवंश एक अच्छी महिला से विवाह किया था और प्रगति की थी राह में। उनके विश्वासी जीवन के सारे बच्चे, पोते पोतियों ने, आने वाले वंशज और अब तक पोते पोतियां आशीषित किया है। ऐसे ही जैसे सख्त दिन की आराधना सभा में भाग लेने का साधारण निर्णय या ना जाने का ने हमारे दादा दादी के परिवार में जीवनों में विशेष विधवानता लाई थी। एक प्रकट रूप से छोटा या निर्णय के चाहे या प्रभुभोज सभा में भाग लेने का बहुत दूर कर चुक सकता है। यह ताकि अनंत परिणत होता है और रबंधों का पालन करने में मिलता है। हम मजबूती से छड़ को पकड़े रहें जो हमारे स्वर्ग पिता की उपस्थिति में जाने का मार्गदर्शन में प्रार्थना करता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।
जब मैं 8 वर्ष का था तब मेरे 2 चचेरे भाइयों और मुझे नदी के कि शहर में 10 लोगों की हमारे परिवार के लिए 15 दिनों का किराने का सामान लेने के लिए भेजा गया था। मुझ मुझे आश्चर्य था कि मेरी दादी और मेरी चचेरी भाई और चाचा को हम पर कितना भरोसा था। उस सुबह का आकाश चमकीला और चमकदार था जब हम अपने तीन घोड़ों के छोटे कारवां में 16 किलोमीटर की यात्रा पर निकले थे। हम खेल में इतने मगन हो गए थे कि हमने अपने सिरों पर समय के चिन्हों को नहीं देखा। जब काले बादल आकाश पर घिर आए थे जब तक कि हम समझ पाते कि क्या हो रहा है, हमें घोड़े पर सवार होने का समय भी नहीं मिल पाया। भारी बारिश और ओले इतनी तेज से बरसने लगे कि हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि घोड़े की काठी खोल दे और काठी के छोटे गधे से अपने को ढक ले। बिना घोड़े के भीगे हुए और ठंड से ठुठरते हुए हमने अपनी यात्रा जारी रखी। अब हम इतना तेजी से चलने की कोशिश कर रहे थे जितना हम चल सकते थे। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमने देखा कि चौड़ा रास्ता जो शहर को जाता था उसमें पानी भर गया था और नदी के समान हमारी ओर चल रहा था। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता था कि हम अपने सिर पर रखे गद्दे को फेंके और शहर के चारों ओर लगी कांटीले तार को पर चल जाएं। रात हो चुकी थी जब हमने थके और कहल और भीगे हुए शहर में घुसने के बाद दिखे पहले घर में शरण मांगी थी। उस भले युवा परिवार ने हमें सुखाया, हमें स्वादिष्ट बीन बिरिटीज दिए और फिर एक कमरे में हमें बिस्तर लिटाया। जल्दी ही हमें पता चल गया कि कमरे का फर्श सपाट मिट्टी का था, इसलिए हमें एक दूसरा विचार आया। हमने फर्श पर गोला बनाया और अपने कंचे के खेल को तब तक खेलते रहे जब तक हम थककर फर्श पर सो नहीं गए। बच्चों के रूप में हम बस अपने बारे में सोच रहे थे। हमने कभी भी उन परिजनों के विषय में नहीं सोचा जो हमारे पीछे घर पर बुरी तरह से हमारी खोज कर रहे थे। यदि हमने सोचा होता तो हमने बेकार के शौक में अपनी यात्रा में देरी ना की होती। और यदि हम बुद्धिमान होते तो अपने आकाश की ओर देखा होता, बादलों को बनते हुए पहचान जाते और तूफान से आगे रहने के लिए अपनी गति को तेज कर देते। अब जबकि मेरे पास थोड़ा अधिक अनुभव है, मैं हमेशा अपने को याद दिलाता हूँ ऊपर देखना न भूले। मेरे चचेरे भाइयों के साथ मेरे अनुभव ने मुझे हमारे समय के चिन्ह पर ध्यान देना सिखाया था। हम एक ऐसे तूफान भरे खतरनाक समय में रहते हैं जिसकी व्याख्या पॉलिस ने की थी। मनुष्य अब स्वार्थी, माता पिता के आगे टालने वाले, कृतज्ञ कृतन अब पवित्र, दोष लगाने वाले असंयमी, परमेश्वर के नहीं बरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इन विषयों के बोलते हैं एल्डर डेलिन एच ऑक्स ने कहा था, हमें संसारिक और आत्मिक दोनों तैयारी करने की आवश्यकता है और जिस तैयारी के अनोखी देख होने की संभावना बहुत अधिक है वह कम नजर आती है और बहुत कठिन है, वह है आत्मिक तैयारी। अन्य शब्दों में ऊपर देखने को अनदेखा ना करें। इतने खतरनाक समय में आत्मिक तैयारी की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं एक बहुत मजबूत समय के चिन्ह के विषय में सचेत करना चाहता हूँ। मेरे पेशे ने मुझे तकनीकी में सबसे आगे रखा है, इसलिए मैं इसके मूल्य को समझता हूँ। विशेषकर सूचना के विषय में इतनी अधिक सूचना अब मनुष्य के उंगलियों पर है, लेकिन इंटरनेट बहुत अधिक गंदी और भटकाने वाली बातों से भी भरा हुआ है। तकनीकी ने हमारी बोलने की स्वतंत्रता का विकास किया है, लेकिन हमें दर्शकों की संख्या पर आधारित झूठी विश्वसनीय आने वाले योग्य ब्लॉगर भी दिखे हैं। इसलिए अब पहले से अधिक हमें इस अनंत नियम को याद रखने की जरूरत है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। विशेष रूप से मैं आपको सावधान करता हूँ, यीशु मसीह और भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की गंदी छवियों को ना देखें या झूठे आरोप लगाने वालों पर ध्यान ना दें। दोनों ही बातों का एक ही प्रभाव होता है, पवित्र आत्मा और उसकी सुरक्षा व समर्थन करने वाली शक्ति चली जाती है। पाप और दुख ध्यान जीवन में आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपका सामना कभी ऐसी चीज से होता है जो सुसमाचार की आपकी गवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ ऊपर देखो, सभी ज्ञान और सच्चाई के स्रोतों को देखो, अपने विश्वास और गवाही का परमेश्वर के वचन से विकास करे। संसार में ऐसे लोग हैं जो झूठ को असत्य बातों के साथ मिलाकर आपके विश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप निरंतर आत्मा के योग्य बने रहें। पवित्र आत्मा की संगति केवल एक सुंदर सुविधा नहीं है, यह आपके आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मसीह के शब्दों को संजो कर रखते हो और आत्मा की चेतावनी को ध्यान से सुनते हो, आप धोखा नहीं खाओगे। यीशु मसीह जो परिपूर्ण था और जोसेफ स्मिथ जिसने स्वीकार किया था कि वह परिपूर्ण नहीं था, दोनों उन झूठे आरोपियों द्वारा मार डाले गए थे जिन्होंने उनकी गवाही को स्वीकार नहीं किया था। हम कैसे जान सकते हैं कि उनकी गवाही सच्ची है कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं और जोसेफ स्मिथ एक सच्चा भविष्यवक्ता है। उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचानोगे। क्या बुरे पेड़ पर अच्छे फल लग सकते हैं? मैं स्वयं के लिए जानता हूँ कि मुक्तिदाता ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है और मुझे मेरे व्यक्तिगत जुए से मुक्त किया है। मुझे आनंद की उस व्यवस्था में ले गया है जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं था। और उसने स्वयं के लिए जानता हूँ कि जोसेफ स्मिथ एक भविष्यवक्ता था क्योंकि मैंने मॉर्मन की पुस्तक की सरल प्रतिज्ञा का उपयोग किया है। मसीह के नाम में परमेश्वर से पूछो और यदि तुम सच्चे हृदय से के साथ वास्तविक उद्देश्य से मसीह में विश्वास करते हुए पूछोगे तो वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा तुम पर इसकी सच्चाई प्रकट करेगा। सरल शब्दों में ऊपर देखो। कुछ हैं जो कहते हैं कि मसीह के पुनरुत्थान या उसके पुनर्स्थापित सुसमाचार की सत्यता में विश्वास करने के लिए कुछ वास्तविक प्रमाण होना चाहिए। क्योंकि मैं कोरी होर कहे आलमा के शब्द को उदाहरण देता हूँ, तुमने पर्याप्त चिन्ह पाया है, क्या तुम अपने परमेश्वर का लालच दोगे? क्या तुम कहोगे मुझे चिन्ह दिखाओ, जबकि तुम्हारे पास इन सभी भाइयों की और सभी पवित्र भविष्यवक्ताओं की गवाही है, धर्मशास्त्र तुम्हारे सामने रखे गए हैं। आप और मैं उद्धारकर्ता के उद्धार की गवाही है। हम भविष्यवक्ता की सेवकाई और उन आरंभिक संतों की विश्वसनीयता की जीवित गवाही है जो अपनी गवाही में मजबूत बने रहे। यीशु मसीह का गिरजा अब संसार भर में फैल चुका है और इतना विकास कर रहा है जितना पहले कभी नहीं किया, जैसा कि यीशु मसीह के समय में था। उसे उन विनम्र लोगों द्वारा ग्रहण किया गया है जिन्हें विश्वास करने के लिए देखने और छूने की जरूरत नहीं। कोई नहीं जानता प्रभु दोबारा कब आएगा, लेकिन अभी तुम हमारे ऊपर संकट पूर्ण समय है। आज सच्चाई के स्रोतों को देखने का समय है और सुनिश्चित करे कि हमारी गवाहियां मजबूत हैं। उन परीक्षाओं के लिए तैयारी करें जिनका सामना हम अवश्य करेंगे। अपनी घटना पर वापस आता हूँ। मेरे चचेरे भाई और मैं अगली सुबह उठे तो सूरज चमक कर और आकाश सुंदर था। एक आदमी जो तीन खोए लड़कों को खोज रहा था उसे दरवाजा खटखटाया। उसने हमें घोड़ों पर बैठाया और हम उसी घास के मैदान से होते हुए घर के लिए वापस चल पड़े। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने घर वापस जाते हुए मार्ग पर देखा था। लोगों की एक भीड़ जो रात भर हमारी खोज कर रही थी, उनके ट्रैक्टर और ट्रक मेरे दिमाग में बस गए थे। उन्हें एक काठी इधर और घोड़ा उधर मिल गया था और जब उन्होंने हमें घर वापस आते देखा, मैं उनकी दिलासा उनके प्रेम को महसूस कर रहा था। शहर के रास्ते में हमारे भाइयों ने दौड़कर हमारा स्वागत किया और हम उनमें सबसे आगे मेरी प्रिय दादी और मेरे चाचा और चाची थे। उन्होंने हमें गले लगाया और रोए और बहुत आनंदित हुए कि उन्होंने अपने खोए बच्चों को पा लिया था। यह मुझे याद दिलाता है कि हमारा प्रिय स्वर्गीय पिता हमारे लिए चिंतित है। वह उत्सुकता से हमारे घर वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे चारों ओर घिरते तूफानों के चिन्ह हैं। आओ हम ऊपर देखें और अपने आप को तैयार करें। मजबूत गवाही में सुरक्षा है। आओ हम अपनी गवाहियों को प्रतिदिन संभालें और मजबूती दें। मैं जानता हूँ हम अनंतता में परिवारों के रूप में एक साथ मिलकर रह सकते हैं कि हमारा प्रिय स्वर्गीय पिता अपनी बाहें फैलाए और अपने बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता जीवित है। पत्रस के समान
किसी मांस या लहू ने मुझ पर प्रकट नहीं किया है, लेकिन मेरे प्रिय पिता ने जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Our six-year-old grandson Ollie.
हमारा 6 साल का नाती ओली, जो मुझे पॉपी बुलाता है, और को मेरी गाड़ी के से कुछ चाहिए था। उसका पिता घर के भीतर खड़ा था और ओली ने के जाने बिना गाड़ी को रिमोट से खोल दिया, और जैसे ओली उसके पास जा रहा था, तब जब उसका काम हो गया दोबारा से उसने बंद कर दिया। ओली ने मुस्कान से भागता हुआ अंदर आया। सारे परिवार ने उससे पूछा था, तूने गाड़ी का दरवाजा अपने लिए कैसे खोला फिर बंद कर दिया? वह सिर्फ मुस्कुराया था। हमारी बेटी उसकी माँ ने कहा, शायद वे पॉपी ने उसे किया था, शायद तुम्हारे पास उनकी तरह जादू की शक्ति है।
I think it's because Poppy loves me and is one of my best friends, and he takes care of me. I have been blessed to know of truly miraculous things.
मैं आशीषित हूँ जानकर कि विश्वासी संतों के साथ पूरे अफ्रीका, पापुआ, ननगुआ और प्रशांत महासागर के द्वीपों में चमत्कारी बातें हो रही हैं। मैं ओली से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि वे लोग स्वर्गीय पिता और उद्धारकर्ता के बारे में वैसा ही महसूस करते हैं जैसा ओली के महसूस करते हैं। मेरे परमेश्वर के मैं परम मित्र के रूप में प्यार करते हैं का ध्यान रखता हूँ। इस गर्जे का सदस्य हकदार है और बातों ने अत्यधिक गवाही प्राप्त की है और प्रभु का अनुसरण करने के लिए पवित्र अनुबंध बनाए हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? परमेश्वर हमारे विश्व का केंद्र है, केंद्र होना चाहिए, हमारा वस्तु केंद्र होना चाहिए। क्या वह है या और जो उसके लिए अज्ञात हो और उसकी समझ और हृदय के से पर्दे हो? ध्यान दें, ये सिर्फ हमारे विचार नहीं है जो महत्वपूर्ण परंतु उद्देश्य है। हमारे व्यवहार और काम हमारे उद्देश्यों पर कैसे प्रभाव डालें। हमारा बेटा बैन जो 16 साल का था स्टेक सम्मेलन में बोला था, जैसा प्रश्न है, आपको कैसा लगेगा कि यदि कोई आपसे हर सप्ताह कुछ करने का वादा करे और अपना वादा पूरा ना कर सके? वह बोलता है, क्या हमें वादों को गंभीरता से लेना है जो हमें प्रभु भोज लेते समय अनुबंध बनाते हैं कि आज्ञाओं को पालन करने और हमें उसे याद रखने के? प्रभु हमें और उसकी समर्थन की शक्तियों को याद करने में मदद करने के रास्ते देता है, एक रास्ते में द्वारा जो कि हम सभी समानता से बांटते हैं। जैसे पीछे मोड़कर परेशानियों को जैसे मैंने झेली हैं, मैं देखता हूँ यह साफ होते हैं। मेरी उन्नति, समझदारी और असमानता उनका परिणाम है। वह मुझे मेरे स्वर्गीय पिता के नजदीक ले गए अनुभवों के साथ और मेरे हृदय को धोकर साफ करता हूँ। उसका मार्गदर्शन और निर्देशन जरूरी है। उसके विश्वासी यर्द के भाई की 2 चुनौतियों में से एक को झुलने में मदद की थी, जब उसने पूछा कि नौकाओं में शुद्ध हवा कहां से आएगी, जैसे विश्वासपूर्वक बनाया गया था। परंतु संकेत करते हुए प्रभु ने केवल अस्थायी अनसुलझी चुनौती को छोड़ा था कि ज्योति कैसे प्राप्त होगी, परंतु तब तक वो उसे साफ कर सकता है। फिर भी प्रभु मार और परेशानियों को अनुमति देता है, यकीन से उसे सुलझाता है। वह ऐसा ही और वायु, वर्षा और बाढ़ को भेजता है। वह ऐसा क्यों करता है और वह क्यों हमें ऐसी किसी चेतावनी देगा कि हमारे आपको खतरे में से अलग कर दे, जबकि वह सीधा खतरे को रोक सकता है? अध्यक्ष विफोर ने कैरेज ने को हटाने के की आत्मिक चेतावनी की कथा सुनाई और अपनी उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में बताया कि उसने बताया कि हवा चलने के बाद एक बड़ा सा पेड़ जड़ समेत उखड़कर वहां पर पहले कैरेज पर गिर गया था। इन दोनों घटनाओं में मौसम को रोककर खतरे को हटा सकता था, परंतु यह सवाल आता है कि खुद की परेशानियों का समाधान करने के बजाय प्रभु हमें विश्वास उत्पन्न कराना चाहता है। परमेश्वर परेशानियों का समाधान करने में हम पर निर्भर होने पर और भरोसा रखने की मदद करेगा। तब हम उसका प्रेम लगातार अधिक क्षमता से, अधिक सफाई से और अधिक व्यक्तिगत तौर से महसूस कर सकते हैं। हम उसके साथ एक हो गए और हम उसकी तरह बन सकते हैं। हमारे लिए उसकी तरह बनना उसका उद्देश्य है, इसलिए यह उसकी महिमा है और उसका काम है। एक युवा लड़का अपने घर के पीछे की गंदी की जगह को सफाई करने लगा ताकि वह अपनी कारों के साथ वहां खेल सके। वह एक बड़ी चट्टान उसके सामने रोके लग हुए थी। लड़के ने पूरी ताकत से उसे धकेला हिलाया, परंतु उसने कितनी भी कठोर कोशिश की उन्हें की हो चट्टान हिलाने पाया था। उसके
His father corrected him. No, you haven't. You haven't had my help yet. They then bent down together and moved the rock.
तो वे सब एक साथ झुककर गए और चट्टान को आसानी से हिला दिया था। मेरे पिता के मित्र के पिता वैरव गोम पापुआ न्यू गाना के एक अध्यक्ष ने जिन्होंने यह भी सिखाया था कि वह जरूरत के समय अपने स्वर्ग के पिता की ओर मोड़ सकते हैं और उन्हें संघी साथी जो फसल उन्होंने उगाई थी वो जीवित हैं। इसलिए उन्होंने पिछला लंबी कठिन समय गुजरा और वनस्पति बहुत सुखी थी। जैसे भविष्यवक्ता ने खुद पिछले जनरल सम्मेलन में वर्णन किया था, ओबीडियंस ब्रिंग ब्लेसिंग्स।
He feared for his fellow villagers and the possible loss of
वह अपने गांव के साथियों के इसलिए संभावता और उनके उपज खोने के डरने लगा था। अगर वह खराब हो गई तो वह अपने गांव के न्याय के अधीन होंगे। अब आग बुझाने के असमर्थ हुए तब उन्होंने प्रभु को याद किया था। मैं अब उसके पुत्र में से उधारता देता हूँ, मेरे दोस्त। वह पहाड़ी पर झाड़ियों से में घुटने टेक कर और आग को बुझाने के लिए स्वर्ग के पिता को प्रार्थना करने लगा। अचानक जहाँ पर प्रार्थना कर रहा था काले बादल छा गए और जोर से वर्षा होने लगी, परंतु वह पर जहाँ आग लगी हुई थी जब उसने चारों ओर देखा वह एक साफ मौसम था सिवाय वहां पर जहाँ आग लिपटे थी। उसने विश्वास न हुआ कि प्रभु उस जैसे एक साधारण व्यक्ति का उत्तर देगा और वह फिर उसे घुटनों के बल होकर बच्चों की तरह रोने लगा और उसको एक बहुत प्यारी अनुभूति थी। हमारा उद्धारकर्ता सच में इसमें कहता है और चाहता है कि हम उसे प्रेम करें, खुद हमारी खुद की इच्छा उसके साथ मिल जाए, तब वह हमें आशीष कर सकता है जैसे वह चाहे। यह इलमन के पुत्र नेफी के साथ हुआ था जो इस स्तर पर पहुंच गया था जहां पर प्रभु उस पर अवश्य रूप से भरोसा करने लगे थे। उसके कारण उसे मांगा था कि देकर आशीष कर पाए थे। लाइफ ऑफ पाई में यान मार्टिन द्वारा काल्पनिक पुस्तक जब हीरो की आवाज में मसीह के बारे में भविष्य भावनाएं व्यक्त करता है, मैं अपने दिमाग में उसे बाहर निकाल नहीं पाता। अब तक नहीं, मैंने पूरे तीन कड़े दिन उसके बारे में सोचने लगा। वह मुझे ज्यादा परेशान करते हैं और मैं उतना कम उसे भुला सकता हूँ। जितना अधिक मैं उस पर सीखता हूँ उतना उसे छोड़ना चाहता हूँ। ठीक वैसे ही उद्धारकर्ता के बारे में महसूस करता हूँ, वह हमेशा पास है, विशेषकर पवित्र स्थानों पे, और कभी कभी मुझे उम्मीद नहीं करता। मुझे लगता है, महसूस होता है कि वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर थपथपाता है, मुझे बताते हुए प्रेम करता है। मैं अनेक अपूर्ण तरीकों से अपना हृदय देकर वापस लौट सकता हूँ। हाल ही में कुछ महीने पहले एल्डर जेफरी आर हॉलैंड के साथ बैठा था। जैसे वह कुछ मशीनों के लिए प्रचारकों की नियुक्ति कर रहे थे, जैसे कि हम निकल गए वहां मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे हम चलने लगे उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। ऐसा करने पर टिप्पणी कह रहा था कि पहले भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं जानता था सच है। मैं विश्वास करता हूँ कि यदि हमें प्रकृति और तौर से उधारकर्ता के साथ चलने का मौका मिल सके तो हम उसका हाथ अपने कंधे पर वैसे ही ठीक महसूस कर पाएंगे। शिष्यों की तरह एमाउस की ओर हमारे हृदय के उत्तेजना बढ़ती है। यह उसका संदेश है, आओ और देखो। यह व्यक्तिगत है, आमंत्रण है, देता हूँ। उसके आमंत्रण को गले लगाते हुए उसका हाथ अपने कंधे पर रख सकते हैं। हम भरोसेमंद महसूस कर सकते हैं जैसा इनोस करता था। उसने छोटे से अध्याय में आखिर आयत में प्रतिबंध कहा, मैं उस दिन में के लिए आनंद मनाता हूँ जबकि यह मेरा पवित्र शरीर अमर रूप से धारण करके उसके समक्ष खड़ा होगा, और जब मैं उसका फेस देखूंगा और वो मुझसे बोलेंगे कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता के महलों के एक स्थान प्रेरित कर रखा है। बहुत सारे अनुभवों को के कारण और शशि के शक्ति के साथ जिसे आत्मा मुझे देती है, मैं सच्चाई की गवाही देता हूँ कि परमेश्वर है। मैं इसका प्यार महसूस करता हूँ। हमें वह करना चाहिए जिससे एक साथ करने की जरूरत हो। हमारी इच्छा इसकी इच्छा के साथ और सच्चाई से उसके प्रेम करना है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
My dear brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन एक निर्णय का दिन होता है। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने सिखाया है कि निर्णय भविष्य को निर्धारित करते हैं। निर्णय लेने में अपनी स्वतंत्रता का बुद्धिमानी से उपयोग करना आपकी आत्मिक प्रगति के लिए अभी और अनंत काल के लिए बहुत जरूरी है। आप सीखने के लिए कभी भी बहुत छोटे, बदलने के लिए बहुत बड़े नहीं हैं। सीखने और बदलाव करने की आपकी इच्छा दिव्य रूप से मिले अनंत प्रगति के प्रयास से होते हैं। हर दिन अनंत काल के लिए निर्णय लेने के अवसर को लाता है। हम अनंत प्राणी हैं, स्वर्गीय माता पिता के आत्मिक बच्चे। बाइबल लिखती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की थी। नर और नारी को उसने बनाया था। हाल ही में मैंने बच्चों को प्रिय गीत आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड गाते हुए सुना था। मुझे आश्चर्य होता है, क्या नहीं मैंने विश्वासी माता या पिता को यह गाना गाते हुए सुना है? क्या हम सभी परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? असल में हम में से कोई भी परमेश्वर की संतान होने से कभी इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर की संतान के तौर पर हमें उसे अपने संपूर्ण हृदय के और आत्मा से प्रेम करना चाहिए, अपने संसारिक माता पिता से भी अधिक। हमें पड़ोसियों से अपने भाई और बहन के समान प्रेम करना चाहिए। कोई भी आज्ञा इनसे महान नहीं है। और हमें सदैव मानव जीवन के मूल्य का इसकी विभिन्न आवश्यकता में आदर करना चाहिए। इस दोहरे अवस्था में आप सब इस बहुमूल्य उपहार अपना शरीर और अपनी आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। मानव शरीर मेडिकल डॉक्टर के रूप में अपने पेशे के वर्षों ने मुझे मानव शरीर के प्रति अत्यधिक आदर दिया है। अपनी आंखों के बारे में सोचो तो देखती हैं, कान जो सुनते हैं और उंगलियां जो आश्चर्यजनक रूप से आपके आसपास की वस्तुओं को छू सकते हैं। आपका हृदय बिना थके दिन और रात धड़कता रहता, जिसका आपको लगभग पता ही नहीं चलता। आपका शरीर अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। दर्द होता है जो चेतावनी देता है कि कुछ गड़बड़ है और ध्यान देने चाहिए, देने की जरूरत है। संक्रमित रोग समय समय पर आक्रमण करते हैं और जब ऐसा होता है तो संक्रमण का सामना करने के लिए अपनी प्रतिधेरक क्षमता बढ़ जाती है। चोट और घाव ठीक हो जाती हैं। मैंने आपके शरीर को परमेश्वर से मिले बहुत से अद्भुत गुणों में से केवल कुछ ही उदाहरण किया है। फिर भी ऐसा लगता है कि प्रत्येक परिवार में, यदि प्रत्येक व्यक्ति में नहीं, कुछ ऐसी शारीरिक अवस्थाएं होती हैं जिसके लिए विशेष देखभाल भी जरूरत है। ऐसी अवस्था में को समझने के लिए प्रभु द्वारा एक उदाहरण दिया गया है। उसने कहा, मैं मनुष्यों को दुर्बलता देता हूँ ताकि वे विनम्र हो सके। यदि के वे स्वयं को मेरे सामने विनम्र करेंगे और मुझ में विश्वास करेंगे, मैं दुर्बलताओं को उनके लिए मजबूत कर दूंगा। विशेष आत्माएं अक्सर अपूर्ण शरीर में होती है। ऐसे शरीर का उपहार असल में ही में एक परिवार माता पिता और भाई बहने के रूप में अपने जीवनों को स्वेच्छा और से उस विशेष बच्चे की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। बढ़ती आयु और भी परमेश्वर का उपहार है, जैसे मृत्यु है। आपके नश्वर शरीर का अंततः मृत्यु परमेश्वर की सुख की महान योजना है, महान योजना के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मृत्यु ही आपकी आत्मा को परमेश्वर के पास लौटने संभव करती है। अनंत काल के दृष्टिकोण से मृत्यु केवल उनके लिए असमयक है होती है जो परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं होते। परमेश्वर की अंतन योजना में अपने शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका होने के साथ यह जानना आश्चर्य नहीं है कि प्रेरित पॉल्स ने परमेश्वर का मंदिर बनाया है। हर बार जब हम शीशे में नजर डालते हैं, आप अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखते हो। इस सच्चाई जिसका हमें हर दिन आभार महसूस करना चाहिए, आपके शरीर की देखभाल और इसके उपयोग के लिए सकारात्मक रूप से आपके निर्णय को प्रभावित करता है और वे निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका शरीर आपकी आत्मा के लिए मंदिर है और आप अपने शरीर का कैसे उपयोग करते हैं अपनी आत्मा की को प्रभावित करती। कुछ निर्णय जो आपके अनंत भविष्य को निर्धारित करेंगे इस प्रकार हैं। आप अपने शरीर की देखभाल और उपयोग के लिए कैसे चुनाव करते हैं? किन आत्मिक गुणों का विकास करने का चुनाव आप करेंगे? आपकी आत्मा का एक अनंत अस्तित्व है। प्रभु ने अब्राहम से कहा, तुम्हारे जन्म से पूर्व तुम्हें चुन लिया गया था। ऐसे ही प्रभु ने जेरमाया और बहुत दूसरे के लिए कहा। ऐसे उसने अपने विषय आपके विषय के लिए भी कहा। आपके स्वर्गीय पिता आपको बहुत पहले से जानते हैं। आप उसके बेटे या बेटी के रूप में उसके द्वारा इस विशेष समय पर उसके महान कार्य में मार्गदर्शक बनकर पृथ्वी पर आने के लिए चुने गए थे। आपका चुनाव आपकी शरीर गुणों के कारण नहीं किया गया था, लेकिन आपके आत्मिक गुणों जैसे बहादुरी, साहस, हृदय की सच्चाई, सत्य की जिज्ञासा, ज्ञान की भूख और दूसरों की सेवा करने की इच्छा के कारण हुआ था। इनमें से कुछ को आपने नश्वरता के में आने से पहले ही विकसित किया था। अन्य गुणों को आप यही पृथ्वी पर विकसित करने कर सकते हैं। आत्मिक गुण में आत्मा निपुणता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा सामर्थ्य हो जिससे इच्छाओं के बजाय तर्कों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और आपका विवेक कठिन लुभावना और परीक्षा की परिस्थितियों की आपकी नैतिक प्रकृति को निर्धारक करती है। उपवास रखने से आपकी आत्मा स्वर्ग से मदद भी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यह प्रार्थना को शक्ति देती है। हमें आत्म निपुणता की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर ने हमारे भीतर पोषण और प्रेम की प्रबल इच्छा को डाला है। ये मानव परिवार में अवस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं, हम लंबी आयु, अधिक प्रेम और परिपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर की सुख की योजना से भटकने के अधिकतर लालच परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई इच्छाओं को दुरुपयोग के से आते हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना हमेशा आसान नहीं होता। हम में से कोई भी इन्हें पूर्ण से बस नहीं कर सकता। गलतियां होती हैं, पाप किए जाते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम इनसे सीख सकते हैं और हम वास्तव में पश्चाताप कर सकते हैं। हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हमारी इच्छाएं भी बदल सकती हैं। कैसे? केवल एक ही तरीका है, सच्चा बदलाव, स्थायी बदलाव, केवल चंगाई, पवित्रीकरण की यीशु मसीह के प्रायश्चित की समर्थ के द्वारा आ सकता है। वह आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रत्येक से प्रेम करता है। जब आप मन से, ईमानदारी से और वास्तव में इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और आप वह आपके आपको उसके सामर्थ्य के ग्रहण अनुमति दे देते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार बदलाव का सुसमाचार है। जब हम आजादी और अनंत जीवन के उच्च मार्ग का चुनाव करते हैं, इस मार्ग में विवाह भी शामिल है। लैटर डे सेंट्स घोषणा करते हैं, पुरुष और स्त्री के बीच विवाह परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ है और उसके बच्चों के अनंत भाग्य के लिए परिवार की योजना ही जरूरी है। हम भी जानते हैं कि लिंग व्यक्ति के पहले ही का जीवन, नाशवान जीवन और अनंत पहचान का उद्देश्य का एक जरूरी गुण है। पुरुष और स्त्री के बीच विवाह प्रभु के सिद्धांत का मूल आधार है और परमेश्वर की अनंत योजना के लिए जरूरी है। पुरुष और स्त्री के बीच विवाह पृथ्वी और स्वर्ग के जीवन की परिपूर्ण के लिए परमेश्वर का आदर्श है। विवाह के लिए परमेश्वर का आदर्श प्रजनन की पवित्र शक्ति और वैवाहिक आनंद की सच्ची घनिष्ठता की सुरक्षा करता है। यदि आप सच्ची खुशी चाहते हैं, तो आप विवाह के लिए परमेश्वर के आदर्श का दुरुपयोग नहीं कर सकते, गलत नहीं समझ सकते या गलत अर्थ नहीं निकाल सकते। हम जानते हैं कि आदम और हवा का, ईव का पति और पत्नी के रूप में मिलन का आनंद अनुभव करने से पहले परमेश्वर द्वारा उनका विवाह किया जाता है। हमारे समय में नागरिक प्रशासन की विवाह को सुरक्षित रखने की एक विशेष और निजी चिंता है, क्योंकि मजबूत परिवार उभरती पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण और समुद्ध उपलब्ध कराने का सबसे आज तरीका है, अच्छा तरीका है। चाहे नागरिक व्यवस्था और नीतियों कैसे भी बनाई जाए, विवाह और नैतिकता और संबंध में प्रभु का सिद्धांत कभी नहीं बदल सकता। याद रखें, पाप बेशक मनुष्य द्वारा जायक ठहराया जाए, परमेश्वर की दृष्टि में पाप ही है। जबकि हम अपने उद्धारकर्ता की दया और करुणा का अनुसरण करते हैं, जबकि हम परमेश्वर के सभी बच्चों को अधिकार और अनुभूतियों का महत्व समझते हैं, हम उसके सिद्धांत को नहीं बदल सकते। भगवान का मार्ग हमारी आत्माओं के लिए निरंतर दिलासा और हमारे घरों में स्थायी शांति लाता है, और सबसे उत्तम उनका मार्ग हमें उसके और उनके, हमारे स्वर्गीय पिता के पास वापस अनंत जीवन और उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह परमेश्वर के काम के महिमा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, प्रत्येक दिन निर्णय का दिन है और हमारे निर्णय हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। एक दिन हम सब न्याय के लिए प्रभु के सामने खड़े होंगे। हम में से प्रत्येक में यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। हम अपने निर्णय का हिसाब करेंगे। हमारे शरीर हमारे आत्मिक गुणों और विषय में बनाए थे, और हमने कैसे विवाह और परिवार के लिए परमेश्वर को आदर्श का सम्मान किया था। मैं निष्ठा की प्रार्थना करता हूँ कि अनंतता के निर्णयता और समझदारी से लें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation to all who have worked so diligently to prepare for these services. We thank those who have spoken and those who have provided the uplifting music. It will now be our privilege to hear from President Thomas S. Monson. Following his remarks, the choir will close this conference by singing, "Abide with me, 'tis eventide." The benediction will then be offered by Elder Claudio R. M. Costa of the 70, and the conference will be adjourned. President Monson.
My brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाई और बहनें, मेरा हृदय भर गया है। जैसे हम इस गिरजे के जनरल सम्मेलन को समाप्त कर रहे हैं, हमें आत्मिक भोज कराया गया है, जैसे हमने सलाह और गवाहियों को सुना है और उनसे जिन्होंने प्रत्येक अधिवेशन में भाग लिया है। हम यहाँ इस शांति और सुरक्षा को शांति सेंटर में मिलाकर कितने आशीषित हैं। यद्यपि हम शारीरिक तौर पर आप लोगों से बहुत दूर हैं, हम आपकी आत्मा को महसूस करते हैं।
Your contributions to the work of the Lord.
हमारे भाइयों के लिए जो इस सम्मेलन में मुक्त हुए हैं, मैं आपके लिए हार्दिक दिल से पूरे गिरजे की ओर से आपकी साले की सेवा के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अनगिनत हैं वे जो आपके द्वारा आशीषित किए गए हैं, आपके योग्य दान के द्वारा प्रभु के कार्य के लिए। स्वर्ग के ब्लेसिंग्स आपके साथ हों। हमारे प्रभु की आत्मा भी आपके साथ हो। वे आपके लिए सुरक्षा बनेंगे। सैतान के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस अब अंत पे है, हम अपने घर जाएंगे, लेकिन हम हमेशा याद रखें, यहाँ हमने आत्मा क्या महसूस की और हमने क्या सुना और क्या सोचा। हम हमेशा भगवान का काम करें। मेरे भाई और बहनों, भगवान आपका सुरक्षा करें आज और हमेशा। हम फिर मिलेंगे 6 महीने में यीशु मसीह के नाम में। जीसस क्राइस्ट, आमीन।
Our beloved Father in heaven, we are so grateful for this
marvelous weekend of thy generosity. हम इसके सुंदर शानदार पवित्र सप्ताहांत के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हम संदेशों और शिक्षाओं के लिए जो हमारे मस्तिष्कों में गए हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए हम भविष्यवक्ता सीयर्स और रेवलेटर्स के लिए और उनके शिक्षाओं के लिए इन अंतिम दिनों में हम बहुत आभारी हैं परमेश्वर जो उन आशीषों की जो पुनस्थान के में हमें मिली है जिनका हम आनंद लेते हैं आज हम विशेष तौर से आभार प्रकट करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस के अंत में हम आपका सुंदरता से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को एक विशेष विश्वास दीजिए ताकि जो कुछ भी हमने सीखा है अपने हाथों में हम आपकी आशा विश्वासों को आपकी आशीषों को अपने हमारे थॉमस मॉनसन और उनके 12 प्रेरितों के परिषद के लिए और आपके चर्च के सभी लोगों के लिए उन आशीषों को चाहते हैं हम अपनी प्रार्थना आपको समर्पित करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 113वीं अर्धवार्षिक महासम्मेलन था। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया। संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा दिया गया था। इसका प्रसारण बॉर्नविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया गया है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।